सुंदर। अभी ये गीत सुना कि हमको हमारे बाबा से ऐसा मंत्र मिला जो सोचो भला और करो भला, जीवन में सबका भला करते जाए, परंतु कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं कि जो भला सोचना तो चाहते हैं लेकिन परिस्थितियां ही कुछ ऐसी है जो भला सोच नहीं पाते हैं, और मन के अंदर अनेक नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं। ऐसे तूफान आ जाते हैं जो कैसे भला सोचा जाए ये विधि भी पता नहीं है। कई बार कई स्थितियां ऐसी होती है, कुछ घटनाएं ऐसी घटती है जो बार बार भगवान के प्रति भी हमारे विचार नकारात्मक हो जाते हैं। और मनुष्य यही कहता है कि बहन जी, हमने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचा, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान भी हमें नहीं चाहता है? भगवान ऐसा क्यों करता है? ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसे परीक्षा के क्षण ये प्रश्न बार बार मन के अंदर उत्पन्न होता रहता है, और इसलिए मन नकारात्मक हो जाता है कि भला करने से भी फायदा क्या हुआ। तो आज के इस सत्र में इसका जवाब हमें मिलेगा कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, क्योंकि जब तक ये प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है तब तक मन फ्रस्ट्रेशन में आता रहता है, अनेक प्रकार का तनाव मन के अंदर बनता जाता है, मन नकारात्मक हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आज के सत्र में उसका उत्तर मिलेगा। समय के साथ इस संसार में हर चीज परिवर्तन होती चली आ रही है, इसलिए कहा जाता कि परिवर्तन कुदरत का नियम है। समय के विषय में आज संसार में बहुत कुछ कहा जाता है, कहते हैं समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता, समय वास्तव में हमसे समय प्रति समय एक प्रतिउत्तर की मांग करता है, और उस अनुसार अगर हमने प्रतिउत्तर दिया तो समय हमें आगे बढ़ा देता है। लेकिन अगर समय के प्रतिउत्तर की मांग पर हमने वो प्रतिउत्तर नहीं दिया और विपरीत दिशा में चले तो समय बड़ा कठोर भी हो जाता है। अनेक पाठ पढ़ाना चालू कर देता है, तब कहते हैं कि समय से बलवान कोई नहीं। कभी किसी को बार बार सुधारने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी अगर वो व्यक्ति सुधरता नहीं है तो यही कहते हैं, ये समय की पछाड़ जब खाएगा तो अपने आप सुधर जाएगा। समय ही इसको सुधार सकता है, ऐसे वचन निकलते हैं। तो इसलिए समय बड़ा बलवान है। समय हमसे जो प्रतिउत्तर मांग रहा है उसके लिए ये बात स्पष्ट कही गई है कि समय हमसे परिवर्तन चाहता है। हर वक्त परिवर्तन, जितना तीव्र गति से समय परिवर्तित होता जा रहा है वैसे समय हमसे भी एक परिवर्तन की चाह रखता है। तब कहा गया है, इफ यू कैनॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल फोर्स यू टू चेंज। समय हमें मजबूर करेगा परिवर्तन होने के लिए, और वो समय बड़ा दर्दनाक होगा क्योंकि भीतर से इच्छा है नहीं और समय की मजबूरी है, परिवर्तन होना पड़ रहा है। इस समय की गति को समझने के लिए, जिसको दूसरे शब्द में काल कहा, ये काल चक्र कैसे चल रहा है, किस गति से चल रहा है और कहां जा रहा है और हमें क्या कह रहा है, समय प्रति समय एक संकेत देता है, सिग्नल देता है। अगर उस सिग्नल्स को समझ जाए, वो संकेतों को समझ जाए और उस अनुसार अपने जीवन को मोड़ दे, तब हम जीवन में आगे बढ़ता जाएंगे। नहीं तो समय अच्छे अच्छे को भी पाठ पढ़ाना चालू करता है। संसार के अंदर हर चीज एक चक्र में चलती है। इस संसार चक्र या काल चक्र, कहा चक्र माना जो नित्य चल रहा है, जिसकी आदि और अंत नहीं है। और इस काल चक्र के अंदर जितने भी कुदरत के बने हुए चक्र हैं, वो सब चक्र भी नित्य चल रहे हैं। कोई चक्र बंद नहीं होता है। दिन और रात का चक्र देखो, नित्य चलता रहता है। ऋतुओं का चक्र देखो, नित्य चलता रहता है। नेचर की साइकिल में अगर देखा जाए तो पानी इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, वो बादल जाकर के बरसते हैं, वो पानी फिर नदियों के माध्यम से समुद्र में मिल जाते हैं। ये साइकिल भी नित्य चलती रहती है। मनुष्य जन्म पुनः जन्म का चक्र देखो, ये भी नित्य चलता रहता है। तो कोई भी चक्र इस संसार के बंद नहीं होते हैं, नित्य चलते हैं। और हर चक्र को चार अवस्था से गुजरना पड़ता है। दिन और रात के चक्र को ले लो, उसमें भी चार अवस्थाएं, सुबह दोपहर शाम रात्रि, रात्रि के बाद पुनः सुबह आ जाती है। ऋतुओं के चक्र में भी देखो चार ऋतुएं होती है। मनुष्य जन्म पुनः जन्म के चक्र में देखो तो भी चार अवस्था है, बचपन, युवा, गृहस्थ, वृद्ध। इसी तरह ये काल चक्र में भी चार अवस्थाएं हैं, जिसको कहा सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के बाद क्या होगा? पुनः सत्ययुग आएगा, क्योंकि ये चक्र है। कई लोग सोचते हैं कि इतना घोर पापाचार का युग कलयुग सत्ययुग में कैसे बदल जाएगा? कोई मनुष्य का काम नहीं है। जिस प्रकार घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में अपने आप बदल जाती है, किसी मनुष्य का काम नहीं है। कोई चाहे या न चाहे, प्रकृति का खेल इस प्रकार है, जो वो घोर अंधेरी अमावस्या की रात भी अपने आप सुबह में बदल ही जाती है। ठीक इसी प्रकार घोर पापाचार की दुनिया कलयुग भी कोई चाहे या न चाहे अपने आप सुनहरे सत्ययुग में बदल जाती है। परंतु हां, ये जरूर है कि हर चक्र की एक अवधि होती है, एक ड्यूरेशन पीरियड होता है, जिसमें उसको उस साइकिल को कंप्लीट करना होता है। कुदरत के नियम अनुसार दिन और रात के चक्र को देखो, 24 घंटा है, उसी 24 घंटे में उसको उस साइकिल को कंप्लीट करनी है। ऋतुओं का चक्र देखो, साल के अंदर उसको कंप्लीट करना है, 365 दिन में उसको कंप्लीट करना है। इसी तरह ये काल चक्र का भी एक ड्यूरेशन है, जिसको कहते हैं 5000 साल। परंतु जब ये 5000 साल सुनते हैं, तब कई लोगों के मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। 5000 कैसे? शास्त्रों में तो लाखों साल का एक एक चक्र बताया है, फिर ये 5000 कैसे? कहां लिखा हुआ है? कौन से शास्त्र में कहा है? किसने कहा? क्या सबूत है? ऐसे अनेक प्रश्न मन के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अगर हम एक ही सवाल पूछे, ये 24 घंटा कहां से आए, किसने कहा, किस आधार पर इसको 24 घंटा बनाया गया, जिसने भी कैलकुलेशन किया होगा, 60 सेकंड की एक मिनट बनाई, 60 मिनट का एक घंटा बना, और इस तरह 24 घंटे में ये दिन और रात के चक्र को बांट दिया और हमने स्वीकार कर लिया। कभी प्रश्न नहीं पूछा कि कहां लिखा है, क्या सबूत है, आदि आदि। 24 घंटे में जो बांटा, अब सोचने की बात है कि जिसने भी उसको डिवाइड किया, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर किया होगा, अगर 50 सेकंड की एक मिनट बनाता था तो नहीं चलता था, 50 मिनट का एक घंटा बनाता था तो नहीं चलता था, घंटे शायद ज्यादा हो जाते, 24 घंटे के बदले 25 घंटे हो जाते थे। ड्यूरेशन तो उतना ही रहना था, चाहे उसको 24 घंटे में बांटो, चाहे उसको 25 घंटे में बांटो, चाहे उसको 20 घंटे में बांटो, वो तो कम जास्ती होने वाले नहीं थे। लेकिन कभी हमने प्रश्न नहीं किया और उसको स्वीकार कर लिया। ठीक इसी प्रकार साल के चक्र को देखा जाए, 365 दिन, किसने कहा? मॉडर्न साइंस ने कहा कि 365 दिन लगते हैं ये चक्र को कंप्लीट होने में। अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो साल में कितने दिन होते हैं? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल में कितने दिन होते हैं? 3 साल के बाद अधिक मास आता है तो साल में कितने दिन हुए? 354 दिन। अब सही कौन सा है? हिंदू कैलेंडर सही है या मॉडर्न साइंस ने जो कैलेंडर दिया वो सही है? दोनों कैलेंडर को हम लेकर के चल रहे हैं, दुनिया का कारोबार इंग्लिश कैलेंडर पर चला रहे और अपना त्योहार मुहूर्त जो भी निकालना होता है वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि हिंदू कैलेंडर भी एक साइंस पर बना है, इसलिए उसको भी रिजेक्ट नहीं करते हैं कि मॉडर्न साइंस ने कहा 365 दिन इसलिए आज के बाद हिंदू कैलेंडर को उठाकर फेंक दो, नहीं, या हिंदू कैलेंडर सही है इसलिए इंग्लिश कैलेंडर को फेंक दो, नहीं, दोनों कैलेंडर लेकर के चल रहे हैं। कभी प्रश्न नहीं पूछा कौन सा सही है और उसको स्वीकार करते गए। ठीक इसी प्रकार 5000 साल का ये चक्र, ये भी एक डिवाइन रेवल्यूशन है जो परमात्मा द्वारा रहस्य स्पष्ट किया गया है, और ये रहस्य वास्तव में देखा जाए तो हर शास्त्र में दिया हुआ है। 5000 साल का चक्र ये हर शास्त्र में बताया हुआ है। हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो महाभारत युद्ध को हुए कितने साल हुए? 5000 साल हुए। और उस महाभारत के लास्ट चैप्टर में जब ये बात लिखी हुई है कि महाभारत काल फिर से कब आएगा, तो कहते हैं जब घर घर के अंदर महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल फिर से आ गया। तो आज घर घर के अंदर क्या है? महाभारत चलता है या नहीं चलता है? महाभारत के सारे पात्रों का प्रैक्टिकल स्वरूप इस समय समाज में दिखाई देता है। धन का दुरुपयोग करने वाले बच्चे दुर्योधन भी आज है, जिसके जीवन में कोई अनुशासन नहीं, ऐसे दुशासन भी आज के बच्चों में दिखाई देता है। धृतराष्ट्र जैसे पुत्र मोह में अंधे माता पिता भी दिखाई देते हैं, और शकुनी जैसे पात्र भी दिखाई पड़ते हैं समाज के अंदर, कि हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा, है कि नहीं? तो इसलिए महाभारत काल फिर से आ गया। ठीक इसी प्रकार मुसलमान धर्म में अगर देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात कही हुई है कि कयामत का समय हर 5000 साल में एक बार आता है, और उनके पवित्र धर्म पुस्तक के हिसाब से भी कयामत का समय आ रहा है। क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्राइस्ट के 3000 साल पूर्व देयर वॉज हेवन ऑन अर्थ, 3000 साल पूर्व 2000 साल बाद नॉस्ट्रोडेमस की भविष्यवाणी के हिसाब से द गोल्डन ईरा इज टू कम। तो हर धर्म में 5000 साल का वर्णन अवश्य है, सिर्फ उस बात को हम वर्तमान समय के साथ रिलेट नहीं कर पाए, इसलिए उसको समझना कठिन हो गया। अब ये 5000 साल का चक्र सत्ययुग त्रेता द्वापर युग कलयुग कैसे चलता है, इसको देखा जाए तो भारतीय शास्त्रों के हिसाब से एक स्वास्तिका के रूप में हम दिखाते हैं। कोई भी शुभ कार्य जब होता है तो स्वास्तिका निकालते हैं, किसी से भी अगर पूछा जाए ये स्वास्तिका का अर्थ क्या है और ऐसे ही क्यों निकालते हैं, तो यही कहेंगे एक शुभ की निशानी है, या कहेंगे हमारे पूर्वज करते हैं इसलिए हमें करना है। यही शुभ की निशानी क्यों है? क्योंकि वैसे देखा जाए तो हिटलर भी स्वास्तिका में बहुत मानता था, लेकिन वो उल्टा निकालता था और वो उसको सुल्टा कहता था और हिंदू लोग इसको सुल्टा कहते हैं। अब सुल्टा कौन सा है? तब हिंदू कहते हैं कि उसने उल्टा निकाला इसीलिए उसका सत्यानाश हो गया, इसलिए ये सुल्टा है। ये कोई लॉजिक नहीं है। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रहस्य समाया हुआ है। उस रहस्य को शायद हम समझ नहीं पाए। स्वास्तिक शब्द संस्कृत के सुअस्ति शब्द से निकला है। सुअस्ति, सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। अर्थात ये काल चक्र सदा ही शुभ है, उसकी कोई घड़ी ऐसी नहीं जिसको हम कहें ये अशुभ है, ये बुरी है। नहीं, हर घड़ी अच्छे से अच्छी ही, हर घड़ी सदा ही शुभ है। लेकिन तब ये प्रश्न आता है कि जीवन में कई बार कई घटनाएं ऐसी दिखाई देती हैं जो बहुत अशुभ होती है, उसको शुभ कैसे समझे? तो गीता के सार में ये बात लिखी हुई है कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो भी अच्छा। तीनों काल अच्छे ही है, जो बीता वो काल भी अच्छा है, जो बीत रहा है वर्तमान काल वो भी अच्छा है और जो बीतने वाला है वो भी अच्छा है। कोई घड़ी बुरी है ही नहीं, हर घड़ी सदा ही शुभ है। लेकिन तब जो कहा कि कई घड़ियां तो ऐसी बुरी महसूस होती है, जो कई लोग भी ये कहने लग पड़ते हैं कि हे प्रभु, ऐसी घड़ी तो किसी के जीवन में न आए, उस समय कैसे ये समझे कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। मुझे याद आता है एक बार एक भाई थे, उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे, कार एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटल में थे। हम उनको मिलने गए, जब मिलने जाएंगे तो क्या कहेंगे, सहानुभूति के ही कुछ शब्द कहेंगे। तो हमने उस भाई से कहा भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ये बात कही उस भाई को बहुत गुस्सा आया, भगवान का नाम मेरे सामने नहीं लो, भगवान बहुत बुरा है, सबका बुरा करता है, और इतना भगवान का नाम लेकर के गाली देने लगा। इतना अच्छा भाई और इतना भगवान के लिए उल्टा बोल रहा है। बहुत आश्चर्य हुआ कि एक एक्सीडेंट क्या हुआ और इतना मानसिक असंतुलित स्थिति हो गई, जो आज भगवान को इतना गाली दे रहे हैं। और बार बार एक ही चीज वो कह रहा था, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सबका जहां तक हो सके अच्छा ही करता चला गया, मैं जितना मेरी कैपेसिटी थी उसी से मैं अच्छा ही करता रहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब उसका जवाब क्या देंगे? आखिर हमें महसूस होने लगा कि जितना ज्यादा देर यहां खड़े रहेंगे ये भाई का गुस्सा बढ़ता जाएगा, बेहतर यही है कि हम बाहर निकल चले। जैसे ही बाहर आ गए तो उसकी वाइफ ने हमें कहा, बहन जी कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो आप क्षमा कर देना, इस वक्त आप इनके मानसिक स्थिति को समझने का प्रयत्न करना। मैंने कहा इतना अच्छा भाई, भगवान में आस्था रखने वाले और आज इतना मानसिक असंतुलन, जो भगवान को गाली दे रहे। तो उसकी वाइफ ने बताया ऐसा नहीं है। तो क्या है? तो उसने बताया कि वो कोई लायंस का या रोटरी का गवर्नर था और उसने अपने टेन्योर में समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया था, सबका भलाई हो ऐसे ही कार्य करता चला गया। अब उसका टेन्योर पूरा हो रहा है और कोई इंटरनेशनल गैदरिंग होती होगी, उस गैदरिंग में उसको जाना था और वहां पर उसका सम्मान होना था, उसको अवार्ड मिलने वाला था। लेकिन 10 दिन पहले उसको ये कार एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, अब जा तो नहीं सकता है। तो जैसे ही एकांत के पलों में वो सोचता था, अरे इतने बड़े बड़े लोग वहां आए होंगे, उन सब के बीच में मैं जाता था, मेरा कितना सम्मान होता था, अवार्ड मिलता था, फोटो निकलता था, जब मैं वहां से भारत आता था, यहां मुझे कैसे रिसीव करते थे लोग, कितना बड़ा फंक्शन रखते थे, और अब कुछ भी नहीं मिलेगा। बस इसलिए उससे ये घटना हजम नहीं हो रही थी और इसलिए वो भगवान को गाली दे रहा था कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कहने लगा कर्म मैंने किया और फल लेने का समय आया तो भगवान ने मेरे हाथ से फल क्यों छीन लिया। अब उसका कोई जवाब तो नहीं दे सकते थे उस वक्त, किसी ने हमारे सामने कह दिया अरे क्यों भगवान को इतनी गाली दे रहे हो, कर्मों का हिसाब किताब तो हर एक को भोगना ही पड़ता है अपना। उसको इतना गुस्सा आया कि कर्मों का हिसाब किताब मैं कहां मना करता हूं, लेकिन वहां से आने के बाद भगवान हिसाब किताब नहीं ले सकता था, पहले ही लेना था उसको। अब उस व्यक्ति को क्या समझाएंगे। खैर हम तो चले गए। 8-10 दिन के बाद गुरुवार का दिन था, भोग लगाते हैं हमारे यहां परमात्मा को, तो सोचा चलो उस भाई के लिए आज प्रसाद लेकर के जाते हैं, हो सकता है कि थोड़ी मानसिक स्थिति ठीक हुई हो। जब हम प्रसाद लेकर के गए तो बड़े खुश बैठे हुए थे, जैसे ही हमें देखा कहने लगा आइए बहन जी आइए, देखो भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। क्या हुआ? तो न्यूज़पेपर उठाकर दिखाया जिस फ्लाइट में वो जाने वाला था, वो फ्लाइट क्रैश हो गया, सारे लोग मर गए, कोई भी बचा नहीं। कहने लगा मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया ना, कभी किसी से गलत व्यवहार नहीं किया ना, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक घात तो आनी ही थी, लेकिन भगवान ने वो बड़ी घात से छोटी घात कर दी और मुझे ये छोटा सा एक्सीडेंट करके रोक लिया, नहीं तो आज मैं उसी फ्लाइट में जाने वाला था। भगवान कितना अच्छा है, जो करता है अच्छा ही करता है, एक नया जीवन दान मुझे दिया। उस फ्लाइट में जाता था मर जाता था, अवार्ड तो मिलना ही नहीं था, सम्मान तो होना ही नहीं था, जीवन भी खत्म हो जाता था। लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान ने मुझे नया जीवन दान दिया, कितना अच्छा किया मेरे साथ। इसलिए जब भी हमारे जीवन में कोई भी ऐसी घटना आए जो उस वक्त हमें अप्रिय लगे और बार बार ये सवाल उत्पन्न हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब है, क्योंकि आपने बुरा नहीं किया, किसी से बुराई नहीं की, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता था। तो इसलिए जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। क्यों चिंता करते हो? बुरा कुछ है ही नहीं। जब ये बात कही, इतनी अच्छी अच्छी बातें वो भाई करने लगा, उसकी वाइफ कहने लगी, बहन जी यही ज्ञान 10 दिन पहले क्यों नहीं आया? मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन अगर गए ना, तो ये 10 दिन गए। कहा, मुझे इतना टेंशन हो जाता था, क्योंकि जो आता था भगवान का नाम लेता था, ये भाई का गुस्सा बढ़ जाता था। और हरेक व्यक्ति कोई गुस्से को सहन नहीं कर पाते थे। कई बार तो ऐसी डिबेट शुरू हो जाती थी और ऐसा आर्ग्यूमेंट छिड़ जाता था जो लगता था जैसे संबंध सदा के लिए खत्म हो जाएंगे। और मुझे इतना टेंशन हो जाता था कि मैं एक एक को बाहर ले जाती थी, हाथ जोड़ जोड़ करके माफी मांगती थी, क्या प्लीज इनकी मनस्थिति को समझने का प्रयत्न करना, इनकी बातों का बुरा नहीं मानना। क्या मैंने अपने कर्मों के लिए इतनी माफी किसी से नहीं मांगी जितना इसके कर्मों के लिए मुझे मांगनी पड़ी? मेरे सबसे बुरे दिन गए संसार में, तो यही 10 दिन गए, तो ये ज्ञान पहले क्यों नहीं आ जाता है? मैंने कहा, बहन समय का शुक्र करो, जो समय ने 10 दिन के अंदर पर्दा खोल दिया कि क्या अच्छा समय हुआ था। जीवन में कई घटनाएं तो ऐसी आती है जिसका पर्दा समय 1 महीने के बाद खुलता है, वो महीना कैसा जाता है। और कई घटनाएं तो ऐसी आती है जिसका पर्दा समय 1 साल के बाद खुलता है, वो साल कैसा जाता है। इसलिए ये तो 10 दिन के अंदर ही खुल गया, तो भगवान का भी शुक्र करो, समय का भी शुक्र करो। इसी तरह कभी कभी जीवन में धैर्यता रखनी पड़ती है जब तक समय पर्दा खोले कि इसमें क्या अच्छा समाया हुआ था। लेकिन तब कई लोग पूछते हैं कि अरे कभी कभी तो इतनी बुरी घटनाएं नजर आती है जिसको हम जानते नहीं पहचानते नहीं, वो व्यक्ति हमसे बुराई करके जाता है, उसको कैसे अच्छा समझे। मुझे याद आता है कुछ समय पहले मैं बॉम्बे गई थी, हमारा एक प्रोग्राम था दोपहर में 3 से 5, शाम का समय हमारा फ्री था, तो एक परिवार वाले आकर हमें कहने लगे, बहन जी शाम के समय अगर फ्री हो तो हम आपका एक प्रवचन रखना चाहते हैं, हमारी कॉलोनी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, सब आध्यात्मिक विचार वाले लोग रहते हैं, अगर आप कहो तो हम शाम को 7 से 8 बजे 1 घंटे के लिए प्रवचन रखना चाहते हैं। हमने कहा शाम को तो फ्री है, तो कहा फिर प्रवचन रखे, ठीक है रखो। अब दोपहर के प्रोग्राम के लिए हम चले गए, 3 से 5 प्रोग्राम पूरा करने के बाद कुछ प्रश्न उत्तर हुए, कुछ अनुभव की लेन देन हुई, मिलना करना हुआ करके 5:30-6 बज गए हम। जब वहां से निकलने लगे तो जो बहन हमारे साथ थी वो कहने लगी, बहन जी अब अगर आश्रम जाएंगे और फिर उनके घर जाएंगे तो रास्ता भी लंबा है और ट्रैफिक का समय शुरू हो गया है, कहीं ट्रैफिक में अगर अटक गए तो 7 बजे भी वहां पहुंच नहीं पाएंगे। तो मैंने पूछा फिर क्या करना चाहिए? कहा आप कहो तो यहां से सीधा चले। मैंने कहा यहां से कितना दूर है? बोले बस 15 मिनट है। हमने कहा फिर तो बड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। कहा कोई बात नहीं, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, माइंड नहीं करेंगे अगर हम जल्दी भी पहुंच गए तो। ठीक है चलो। हम चले, 6 बजे में पहुंच गए। अब उन्होंने इतना जल्दी हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो सारा के टीवी देख रहा था। जब हम गए तो थोड़ा हड़बड़ा गए, माँ बाप बच्चों को इशारा करने लगे टीवी बंद करो, तो बच्चों ने इशारा किया हम बंद नहीं करेंगे। आजकल तो बच्चों के आगे कमी चलती है माँ बाप की, तो माँ बाप ने फिर कहा अच्छा वॉल्यूम स्लो करो, तो बच्चों ने वॉल्यूम स्लो कर दिया। अब उनका वॉल्यूम स्लो करवाया, वहीं बैठक थी तो वहीं बैठना था, माता पिता हमसे बात करने लगे कैसा रहा प्रोग्राम क्या हुआ आदि आदि पूछने लगे, तो हम बातें कर रहे थे उनका वॉल्यूम स्लो कराया तो उनको डिस्टर्ब तो होगा। उनके घर में छोटा बच्चा था 10-12 साल का, वो उठ के आके हमको कहने लगा दीदी प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आप थोड़ा साइलेंस रहेंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी भाषा में उसने मुझे कह दिया कि आप चुप रहिए। मुझे भी हंसी आई उसकी बात सुनकर, तो मेरे को कहने लगा ऐसा है ये सीरियल जो चल रही है ना बहुत अच्छी चल रही है और आज उसका लास्ट एपिसोड है, इसलिए हम उसको मिस करना नहीं चाहते। वो अपना जस्टिफिकेशन दे रहा था, फिर कहने लगा आज के ये एपिसोड में कई सस्पेंस खुलने वाले हैं, इसलिए भी हम मिस करना नहीं चाहते, प्लीज माफ करना लेकिन आप थोड़ा सहयोग देना। ठीक है, अब साइलेंस में बैठना था, उनकी वो सीरियल चल रही थी, तो मेरे मन में विचार आया देखे तो सही क्या सस्पेंस खुल रहा है, तो मैं भी देखने लगी। एक भी दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई कनेक्शन नहीं था, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, कोई स्टोरी जैसा भी नहीं था, फिर क्या अच्छा था। तो वो बच्चा मुझे कहने लगा दीदी ऐसा है आपने सारे एपिसोड नहीं देखे ना इसलिए आपको कुछ समझता नहीं था, लेकिन हमने तो सारे एपिसोड देखे हैं ना इसलिए हमें कनेक्शन समझ में आ रहा था कि ये दृश्य का कनेक्शन कौन से एपिसोड के साथ है, और इसलिए हम उसको रिलेट कर सकते थे, इसलिए हमें अच्छा लगता था कि हर बात जो दिखाई बहुत सुंदर दिखाई। वो तो इतनी बात कह के चल दिया, लेकिन इतनी बड़ी बात मुझे समझा के गया कि ये 5000 साल के चक्र में हमारे भी कितने जन्म हैं, एक एक जन्म एक एक एपिसोड है। अब ये कलयुग का लास्ट जन्म कहो लास्ट एपिसोड है, अब लास्ट एपिसोड में तो सारे सस्पेंस ही खुलने हैं ना। जीवन के अंदर कई घटनाएं ऐसी आती है जिसको हम जानते नहीं पहचानते नहीं, वो व्यक्ति ऐसा बुराई का व्यवहार करके चला जाता है और हमको बड़ा गुस्सा आता है कि क्या मतलब, इसको हम जानते नहीं पहचानते नहीं ये फिर बिना मतलब ऐसी बातें क्यों कर रहा है, और हम खड़े हो जाते हैं उसके सामने तन करके। लेकिन इसका कनेक्शन कौन से एपिसोड में कहां है, हमें भी अगर सारे एपिसोड याद रहते थे तो हम भी वो बच्चों की तरह खुश होके ताली बजाते थे, वाह बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया यही कहते थे, गुस्सा होते ही नहीं थे, क्योंकि गीता के सार में इसीलिए ये बात कही है हे अर्जुन जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा, तुम निश्चिंत रहो, बुरा कुछ है ही नहीं। हर दृश्य जो इस जीवन के अंदर आ रहे हैं उसका कनेक्शन कोई न कोई एपिसोड के साथ जरूर जुड़ा हुआ है, तो कभी दुखी होने का सवाल ही नहीं आता है, कभी कोई बात हमें अपसेट नहीं कर सकती है, कभी कोई बात हमें टेंशन में नहीं ला सकती। अब ये चारों युगों का चक्र किस प्रकार चलता है इसको अगर देखें तो स्वास्तिका में चारों भाग एक बराबर है, क्लॉकवाइज ये चलता है, और उसमें स्वास्तिका का जो प्रथम हाथ दर्शाया है राइट हैंड साइड पर ये पोजीशन में है अर्थात आशीर्वाद, राइट हैंड साइड में आशीर्वाद का पोज, अर्थात उस युग में जो भी आत्माएं थी वो परमात्मा से आशीर्वाद प्राप्त की हुई आत्माएं थी, दे वर ब्लेसेड सोल्स, इसीलिए उनको भी कहते हैं भगवान भगवतियां। भगवान भगवतियां क्यों कहते हैं? भगवान शब्द को अलग करो, भगवान जिन्होंने भाग्य विधाता से श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त किया था, ऐसी भाग्यवान आत्माएं थी, गॉड्स एंड गॉडेसेस जिसको कहते हैं। सृष्टि का पहला पहर या ये चक्र का पहला पहर, शुरुआत नहीं कहूंगी, जैसे दिन और रात का साइकिल कब शुरू हुआ पता नहीं, लेकिन पहला पहर सुबह को माना जाता है, प्योर सुंदर फ्रेश। इसी तरह सत्युग को काल चक्र का पहला पहर माना जाता है कि जिस युग के अंदर हर आत्मा ब्लेसेड सोल थी। बाइबल में बहुत सुंदर बात कही हुई है जेनेसिस चैप्टर 1 में कि जब भगवान ने ये संसार का पहला पहर रचा तो कैसा था, तो उसमें लिखा हुआ है कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, परमात्मा ने मनुष्य को अपनी कृति में बनाया था, कि जैसे परमात्मा सर्व गुणों में संपन्न है इसी तरह हर आत्मा भी अपने संपन्न स्वरूप में थी, ये उनकी पहली कृति थी। इसलिए कहा भगवान भगवतियां अनेक है, गॉड्स एंड गॉडेसेस आर मेनी बट गॉड इज वन, जो कैपिटल जी वाला गॉड आता है, गॉड इज वन। गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए स्मॉल जी लिखते हैं, भगवान भगवतियां अनेक है लेकिन भगवान परमात्मा एक है। तो ये उसकी पहली कृति थी जहां संसार के अंदर पवित्रता सुख शांति समृद्धि सब कुछ था, हर आत्मा सोले कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वगुण संपन्न थे, जिसको दूसरे शब्द में कहते हैं सूर्य वंश, कि जैसे सूर्य की कला कभी कम जास्ती नहीं होती ऐसे आत्माओं की कला भी कम जास्ती नहीं होती थी, सब संपन्न स्वरूप में थे। उस दुनिया में राज्य करने वाले कौन थे, तो कहते हैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। कैसे पता चला कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था, तो श्री नारायण के साथ हमेशा एक प्रीफिक्स लगता है, सत्य नारायण या सूर्य नारायण, अर्थात कि श्री नारायण सत्युग के महाराजा थे, सूर्यवंशी थे, इसलिए उनको कहा सत्य नारायण या सूर्य नारायण। जैसे जैसे समय बीतता गया सृष्टि नाटक का दूसरा युग आया जिसको कहा त्रेता युग। त्रेता अर्थात जहां थोड़ी त्रुटि आत्माओं में आ गई, वो सोले कला संपूर्ण स्थिति से धीरे धीरे दो कला कम हुई, 14 कलाधारी हुए, जिसको दूसरे शब्द में कहा चंद्रवंश, कि जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती है ऐसे आत्माओं की कला भी कम होने लगी। पवित्रता सुख शांति समृद्धि सब कुछ है वहां भी, लेकिन सत्युग जितनी परफेक्शन की स्थिति नहीं है, इसलिए उसको त्रेता युग कहा। उस युग में राज्य करने वाले कौन थे, तो श्री राम और श्री सीता उस युग में राज्य करते थे। कैसे पता चला श्री राम का राज्य था, तो श्री राम के साथ शब्द जुड़ता है श्री रामचंद्र, सूर्य नारायण और रामचंद्र, इसलिए दिखाते हैं कि श्री राम के पूर्वज सब सूर्यवंशी थे, परंतु जहां से श्री राम आए वहां से दूसरा युग आरंभ हो गया जिसको कहा राम राज्य या चंद्रवंश या त्रेता युग। अब कई बार कई लोगों को प्रश्न उत्पन्न होता है कि श्री राम ने या त्रेता युग वालों ने ऐसे कौन से कर्म किए जो दो कला कम हो गई, 16 कला से 14 कलाधारी बने, कोई कर्म करने वाली बात नहीं थी। लेकिन संसार का नियम है कि हर चीज सुव्यवस्थित से अस्त व्यस्त होती है। एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज। साइंस में थर्मोडायनामिक्स का सेकंड प्रिंसिपल है लॉ ऑफ एंट्रोपी, जिसमें कहा गया है कि एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज। और इसलिए जो देवी देवताएं 16 कला संपूर्ण थे, वो धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरने लगे। कोई भी चीज पहले नई होती है, नई से पुरानी अपने आप हो जाती है। कपड़ा ले आओ बाजार से, नया है, कबाट में रख दो उसको, 10 साल तक रखा रहे, 10 साल के बाद निकालो, क्या कहेंगे, 10 साल पुराना है, अरे यूज भी नहीं किया, पुराना कैसे हो गया। तो ये लॉ ऑफ नेचर है कि डेप्रिसिएशन उसको लगता ही है। मकान नया होता है, धीरे धीरे पुराना हो जाता है, पुराने से नया बनाना पड़ता है, लेकिन नए से पुराने अपने आप होता है। ठीक इसी प्रकार कुदरत में देखा जाए, हर चीज ऊपर से नीचे की ओर अपने आप आती है। पानी ऊपर से नीचे की ओर अपने आप आता है, नीचे से ऊपर उसको मोटर से चढ़ाना पड़ता है। और कोई भी चीज संसार में सदा काल स्थाई एक ही स्थिति में नहीं रहती है। चंद्रमा को देखो, पूर्णमासी कितना दिन रहता है, एक दिन, उसके बाद फिर से अमावस्या के तरफ उसकी यात्रा होती है। हर स्टेज एक एक दिन और फिर पूर्णमासी की ओर आ जाती है। तो कोई भी चीज सदा स्थाई एक ही स्थिति में नहीं रहती। इसी तरह आत्माओं की स्थिति भी नित्य परिवर्तन होती जाती है। संसार में हर चीज परिवर्तित होती जा रही है, कोई भी चीज सदा स्थाई एक ही स्थिति में नहीं रहती, ये संसार का नियम नहीं है। और इस तरह से संसार में तीसरा युग आया जिसको कहा द्वापुर। द्वापुर अर्थात जहां से दो पुर आरंभ हुए। सतयुग अर्थात सत्यता का समय, एकता का समय। तो सत्ययुग और त्रेता युग एकता का युग है। द्वापर युग से द्वैत भावना की प्रवेशता होती है, इसलिए सत्ययुग और त्रेता युग को अद्वैतता का राज्य कहते हैं। द्वापर से द्वैत भावना की प्रवेशता होने लगी और इसलिए मनुष्य जीवन में भी क्लैशेस, दो मत होने के कारण सत्य के साथ असत्य जब मिक्स होने लगा तो क्लैशेस आरंभ होते हैं। और ये क्लैशेस के कारण दुख और अशांति शुरू होती है। तब कहा जाता है दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, अगर सुख में करे तो दुख काहे को होए। अर्थात संसार में दुख क्यों आया, क्योंकि सत्ययुग और त्रेतायुग के समय किसी ने भगवान को याद नहीं किया, सब सुखी थे। लेकिन द्वापर युग जब से आने लगा, दुख अशांति जब आरंभ हुई, क्योंकि मतभेद आरंभ हो गए, तब अनेक प्रकार के ये दुख शुरू जब हुए तो भगवान को याद करना आरंभ किया, हे प्रभु शांति दो, हे प्रभु सुख दो। तो शिरोमणि भक्त आत्माएं जो हो गए वो भी द्वापर युग में होने लगे। और जब भगवान को याद करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि भगवान उसका रिस्पांस न दे। इसलिए भगवान ने रिस्पांस दिया कि उस समय में महान आत्माएं संसार में आती है, जन्म लेती है। और किसी ने ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं, हरेक ने यही कहा हम भगवान के पैगंबर हैं, पैगाम लेकर के आए हैं। और इस तरह से पैगाम देना आरंभ करते हैं। मुख्य रूप से तीन धर्म पिताएं संसार में आते हैं भारत से बाहर। सबसे पहले इब्राहिम आते हैं जिसने इस्लाम धर्म की स्थापना की। उसके बाद महात्मा बुद्ध आते हैं जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की। और उसके बाद क्राइस्ट आते हैं जिसने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। ऐसे तीन मुख्य धर्म पिताएं उस समय में आते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए। हरेक ने यही कहा हम भगवान का पैगाम सुनाने आए हैं, किसी ने अपनी कोई बात नहीं कही। लेकिन वहां की समाज की रचना को देखते हुए उन्होंने कुछ बातें सुनाई। भारत में तो अनेक आ गए महापुरुष, हर स्टेट में कोई ना कोई महापुरुष हो गए, लेकिन भारत से बाहर ये तीन गए। वहां की समाज की रचना को देखते हुए इब्राहिम ने प्रचार किया और जीवन जीने के कुछ सिद्धांत दिए, लॉज टू गवर्न ह्यूमन लाइफ। परंतु अफसोस कि उस समाज के लोगों ने उस संदेश को समझा नहीं। जहां महात्मा बुद्ध गए थे वहां की समाज की स्थिति कैसी थी, उस स्थिति को देखते हुए उसने भी कुछ प्रचार किए, समाज के लोगों को कुछ समझाना चाहा। परंतु अफसोस वहां के समाज के लोगों ने भी उसको समझा नहीं। वहां उन्होंने क्या देखा तो उस समाज के अंदर मनुष्य जीवन में दया नाम की चीज नहीं थी। तब उन्होंने कहा दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो। और दूसरा उनके कर्म भ्रष्ट होने लगे थे, तब उन्होंने कहा कर्म ही धर्म है। लेकिन वहां के लोगों ने इस बात को समझा नहीं। इसलिए आज दुनिया के अंदर भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहां होते हैं, उन्हीं देशों में होते हैं जहां महात्मा बुद्ध का प्रचार अधिक रहा। और दया नाम की चीज नहीं है। आज भी कोई भी चाइनीज कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में चले जाओ, क्या खाते हैं वो लोग? जो दुनिया में कोई नहीं खाते हैं वो ये लोग खाते हैं। आप सोचेंगे बहन जी को कैसे पता, कुछ समय पहले मैं हांगकांग चाइना के तरफ गई थी, तो जैसे चौपाटी पर बेलपुरी पानीपुरी के स्टॉल्स यहां लगे होते हैं, ऐसे हांगकांग की चौपाटी भी बहुत मशहूर है। वहां पर भी छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे। हमको एक आइलैंड पर जाना था, बोट लेना था, तो जब बोट लेने जा रहे थे तो वो चौपाटी से गुजरना पड़ा। 10 मिनट तक वहां से जब गुजरे, दोनों तरफ स्टॉल्स लगे हुए थे, वो दृश्य जो मैंने देखा मुझे कभी भूलता नहीं है। ऐसे लंबे लंबे सांप लटक रहे थे और उसको तवे पर रखकर फ्राई करके उसके टुकड़े कर करके लोग खा रहे थे बड़े चाव से। कॉकरोच की चटनी पीसी जा रही थी, बड़े बड़े खेखड़े तले जा रहे थे। जब ये दृश्य देखा तब मुझे महसूस हुआ कि 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने क्यों ये संदेश दिया कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो। लेकिन अफसोस आज दिन तक ये धर्म के लोगों ने इस बात को नहीं समझा। अभी आप सभी ने कुछ ही समय पहले इंटरनेट में देखा होगा कि ताइवान के अंदर छोटे छोटे इंसान के बच्चे, 10 दिन के 15 दिन के बच्चों को होटल वालों को बेचा जाता है $2000 में। 1500 से 2000 डॉलर में उसको बेचा जाता है। और वो होटल वाले वो बच्चों को ओवन में रख देते हैं और उसको बेक करते हैं, और जो कस्टमर आते हैं उनको सर्व करते हैं। वो कौले कौले जो अंग है बच्चों के, मनुष्य बड़े चाव से खा रहा है। आज वो समय आ गया है कि माँ बाप अपने बच्चों को बेच करके, वहीं जा करके अपने बच्चों को खाते हुए भी नजर आते हैं। कहने का भावार्थ, दया नाम की चीज नहीं है। इसलिए कहा उस समाज के लोगों ने यह संदेश को समझा नहीं। इसी तरह जहां क्राइस्ट चले गए थे वहां के समाज की स्थिति कैसी थी, तो उस समाज में भी कुछ ऐसी बातें उन्होंने देखी। और दो बातों पर उनका प्रचार रहा। सबसे पहली बात जो उन्होंने देखी कि मनुष्य जीवन में सत्यता खत्म होती जा रही है और झूठ व्याप्त होने लगा, और मनुष्य को मनुष्य के प्रति नफरत की भावना है। तब उन्होंने अपने प्रचार में कहा, लव इज गॉड, ट्रुथ इज गॉड, प्रेम ईश्वर है, सत्य ईश्वर है। परंतु अफसोस कि उस समाज के लोगों ने उसको समझा नहीं, और प्रेम और सत्यता का संदेश देने वाले क्राइस्ट के साथ क्या किया। एक जिंदा व्यक्ति को जब क्रॉस पर चढ़ाते हैं और कील ठोकते हैं, कितना टॉर्चरिंग किया गया उसको, ये स्पष्ट कर दिया कि हमारे हृदय के अंदर मनुष्य के प्रति नफरत की भावना है। हम अपने धर्म पिता को नहीं छोड़ते तो बाकी किसको छोड़ेंगे। और इसलिए जहां पर भी ये वेस्टर्न दुनिया के लोग चले गए, गए थे ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, वहां जाने के बाद उस देश का राज्य अपने हाथ में ले लिया, प्रजाओं को राजाओं को आपस में लड़ा दिया झूठ का इस्तेमाल करके, और नफरत के बीज बोने लगे। और जब राज्य वापस दिया तो क्या किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, देश का दो टुकड़ा कर दिया। सिर्फ टुकड़ा नहीं किया, लेकिन नफरत के बीज कितने गहरे बोए गए जो इतने सालों के बाद भी लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं मालूम नहीं। जिसके लिए लड़ रहे हैं उसका सुख न वो ले रहे न हम ले रहे, लेकिन लड़ाइयां चल रही है। सोचो कितने गहरे नफरत के बीज बोए हुए हैं जो कोई बात पर समाधान ही नहीं हो रहा है। तो ये हुआ कि उस समाज के लोगों ने उन बातों को समझा नहीं, और इसलिए आज संसार यहां तक पहुंच गया। और ऐसे जब कलयुग की स्थिति आ जाती है तो ये कलयुग की दुनिया के अंदर, दूसरे शब्द में इसको कहे तो रावण राज्य आरंभ हो गया। रावण राज्य इसको क्यों कहते हैं? रावण कोई असुर नहीं था, ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था। रावण जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं था, रावण जैसा धनवान कोई नहीं था जिसकी लंका सोने की थी, और रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं था, रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था। जीवन की चारों आवश्यकता उसके पास थी, अर्थ बल बुद्धि और भक्ति, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी उसका राज्य का सर्वनाश करने के लिए, अंत करने के लिए भगवान को आना पड़ा। क्यों? क्योंकि रावण के जीवन में दो बातों की कमजोरी थी जो बढ़ती ही जा रही थी, और वो था पहला अहंकार। अहंकार चरम सीमा पर पहुंच रहा था, और दूसरा अनैतिकता, चरित्र भ्रष्टता आने लगी। इसलिए स्वयं भगवान को आना पड़ा, ऐसे कहते हैं। ठीक इसी प्रकार आज की दुनिया भी रावण राज्य से कम नहीं है। सभी प्राणियों में मनुष्य ऊंची जाति का है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं, मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, आज मिसाइल पावर है उसके पास। मनुष्य जैसा धनवान कोई नहीं और मनुष्य जैसा भक्त भी कोई नहीं। गली गली में मंदिर खुलते जा रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी मनुष्य जीवन में भी दो बातों की कमजोरी आ गई है। सबसे पहली बात, अहंकार चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है, और दूसरा अनैतिकता, चरित्र भ्रष्टता भी धीरे धीरे ऊंचाई को प्राप्त कर रही है। और इस तरह ये कलयुग की दुनिया जहां कलह क्लेश है, हर घर के अंदर, हर मन के अंदर कलह क्लेश समाया हुआ है, ऐसी जब ये दुनिया हो जाती है तो भगवान को भी आना पड़ता है। इसलिए कहा, इस कलयुग में हर प्रकार की बुराई उसकी चरम सीमा पर पहुंच गई है। लेकिन अब देखा जाए तो जैसे कहा जाता, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी आकर के रही। लेकिन जब ये बात कहते हैं ना, तो मनुष्य भी क्या कहता है, अरे अभी तो कलयुग बच्चा है, अभी तो बहुत साल पड़े हुए हैं। सोचने की बात है, अगर बचपन में ही ऐसी स्थिति हो तो बुढ़ापे की स्थिति क्या हो सकती है। अब बहुत साल नहीं रहे, वो कवि प्रदीप जी का गीत याद आता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ऐसा कलयुग आया रे, और उसमें सारी कलयुग की निशानियां वर्णन की हुई है। गरुड़ पुराण में ये बात बताई है कि कलयुग का अंत होगा तो ये दुनिया कैसी होगी, उसका वर्णन है। आज वही सारी निशानियां कलयुग की प्रैक्टिकल में दिखाई दे रही है। इसलिए अब कलयुग ज्यादा समय चलने वाला नहीं है, अब बहुत थोड़ा सा समय बचा है, अब बच्चा नहीं है। विज्ञान के रूप से भी अगर देखा जाए तो अब कलयुग अपने अंतिम चरणों में है। आज जिस प्रकार पोल्यूशन फैलता जा रहा है, जिस प्रकार ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगी है, ओजोन लेयर्स में होल्स होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और जिस प्रकार वृक्ष कटते जा रहे हैं, मनुष्य जीवन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो जीवन कैसे रहेगा। इसलिए हर प्रकार की बुराई उसकी चरम सीमा पर आ गई है। इसलिए अब ये दुनिया ज्यादा समय नहीं चल सकती। कुछ समय पहले माउंट आबू में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आए थे, उनका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम था। उनसे बात करते समय उनसे पूछा कि मनुष्य जीवन के लिए वृक्ष कितने होने चाहिए ये संसार में। तब उन्होंने बताया कि जिस तरह का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ये पॉपुलेशन को जीवित रहने के लिए कम से कम 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। हमने उनसे पूछा अभी कितने फॉरेस्ट है, तो कहा ऑन पेपर 14%, प्रैक्टिकल में 11%, और ये भी अगर 9% हो गए तो उसके बाद ह्यूमन सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल, क्योंकि लोगों को इतना ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, और फिर भी दिन प्रतिदिन वृक्ष कटते ही जा रहे हैं। इसलिए कहा कि अब नेचर भी जिस प्रकार इम्बैलेंस हो रही है, ये इम्बैलेंस यही सिद्ध करता है कि अब ये संसार ज्यादा समय नहीं चलेगा, अब उसके अंतिम चरणों में आ गया है, जब भगवान को भी इस संसार में आना पड़ता है। और जब भगवान इस संसार में आते हैं, जैसे कहा यदा यदा ही धर्मस्य, तो भगवान को भी आना पड़ता है। और वो कैसे आते हैं, पर काया प्रवेश करके, और आ करके मनुष्य आत्माओं को समाज की स्थिति को देख करके कुछ शिक्षाएं देने लगते हैं और दो बातें समझाते हैं। क्योंकि समाज के अंदर इतनी भ्रष्टता है, इम्प्यूरिटीज बढ़ती जा रही है कि ये इम्प्यूरिटीज के कारण भगवान ने भी जो दो बातों की शिक्षा दी कि आत्म शुद्धिकरण करो, योगी बनो, पवित्र बनो। लेकिन जब ये बात कहते हैं तो आज की दुनिया के लोग भी क्या कहते हैं, अरे बहन जी सारे लोग पवित्र हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी, सारे लोग पवित्र होंगे भी नहीं और दुनिया को चलाने का ठेका हमने नहीं लिया है, वो ऊपर वाले का है, उसको पता है ये दुनिया कैसे चलानी। कुछ समय पहले हम कहीं प्रवचन के लिए गए थे, सप्ताह थी वहां पर भी, 7 दिन बहुत सुंदर प्रवचन माला चलती रही, 7वें दिन कुछ प्रश्न उत्तर रहे, अनुभव की लेन देन रही। एक भाई ने खड़े होकर अपना अनुभव सुनाया, 7 दिन में लगातार आता रहा, मैंने सुना सब बातें, ब्रह्मा कुमारी की बातें इतनी प्रैक्टिकल लॉजिकल, इतनी क्लैरिटी है उसके अंदर, इतना सत्य सुनाती है, लेकिन फिर भी उनकी एक बात के कारण हम दूर भागते रहे। हमने कहा ऐसी कौन सी बात है, तो कहने लगा कि लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बना देती है। अब ब्रह्मा कुमारियों को क्या पड़ी है किसको भाई बहन बनाए, जब हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे कहते हैं ना, ये प्रार्थना जब करते हैं तो भाव क्या निकलता है, भाइयों ने भी यही प्रार्थना की, बहनों ने भी यही प्रार्थना की ना, या कुछ अलग किया कि मेरे पति के मात पिता मेरे सास ससुर, कभी भगवान को कहा नहीं, मात पिता ही कहा, तो उस वक्त कौन बन गए थे, और ये प्रार्थना किसने सिखाई थी, ब्रह्मा कुमारियों ने नहीं, ब्रह्मा कुमारियों ने तो ऐसी कोई प्रार्थना नहीं सिखाई, ऐसी कोई योग कमेंट्री नहीं कराई जहां कहा हो कि आप भाई बहन बन जाओ, ना कोई ऐसा ज्ञान सुनाया। परमात्मा का संदेश सुनाते हैं जो समय की पुकार है कि आत्म शुद्धिकरण करो, योगी बनो, पवित्र बनो, बनना न बनना आपके ऊपर है, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आज समय की पुकार भी यही है कि दुनिया के अंदर सबसे नंबर 1 पर जो बीमारी चल रही है कौन सी है, एड्स, जिसका कोई इलाज नहीं। समय भी यही सिग्नल दे रहा है, संकेत दे रहा है कि अब आत्म शुद्धिकरण करो, आत्म संयम में रहो, नहीं तो समय का शिकार बन जाएंगे। तो समय का संकेत भी यही है, फिर भी अगर मनुष्य अपनी वृत्तियों को परिवर्तन नहीं करेगा तो समय मजबूर करेगा और वो समय बड़ा दर्दनाक होगा। इसलिए अब समय के संकेत को भी समझते हुए अपने अंदर ये परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, नहीं तो समय की मजबूरी हो जाएगी और वो समय बड़ा दर्दनाक होगा। लेकिन तब कई लोग पूछते हैं कि पवित्र क्यों बनना चाहिए, क्यों नहीं भगवान ऐसे ही खत्म कर दे। नहीं, भगवान को कहा ही गया है जानी जाननहार, कुदरत की जो साइकिल है उसमें भगवान कोई इंटरफियर नहीं करता है, क्योंकि भगवान अगर इंटरफियर करने लग जाए तो संसार इंबैलेंस हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी चल रहा है उसके हिसाब से ही परमात्मा अपनी श्रीमत देता है और यही शिक्षा दी है समय के हिसाब से। आज प्रैक्टिकली कोई न्यूज़पेपर उठाओ, न्यूज़पेपर में जब कामेशु क्रोधेशु मनुष्य के कृत्य आते हैं, पढ़ते समय कैसा लगता है, अच्छा लगता है। आने वाला समय कैसा होगा ये हमारा विवेक भी समझ सकता है कि कामेशु क्रोधेशु मनुष्य बढ़ेंगे या कम होंगे, बढ़ेंगे, ये समय का संकेत है। उस वक्त आत्मरक्षा का साधन क्या है, कोई इंसान किसी की रक्षा नहीं कर सकता है, रावण जैसा रावण, इतना शक्तिशाली जिसने श्री राम को युद्ध के लिए चैलेंज कर दिया, सीता जी को सम्मोहित करके ले आया, लेकिन अपने महल में नहीं रख सका, बगीचे में रखना पड़ा। सीता जी के पास अपनी आत्मरक्षा के लिए कौन से शस्त्र थे? एक तिनका उठा करके सीता जी ने रावण को चैलेंज किया कि हे रावण, इस तिनके से आगे तूने एक कदम भी बढ़ाया तो जल जाएगा, इतनी शक्ति है मेरी। कौन सी शक्ति थी उसके पास? ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति थी। 14 साल का जो ब्रह्मचर्य व्रत था उसके पास, ये शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि रावण जैसे शक्तिशाली को भी चैलेंज कर दिया और रावण भी उसको स्पर्श नहीं कर पाया। इसलिए आने वाले समय में जब ऐसे कामेशु क्रोधेशु मनुष्य बढ़ने वाले, ये कृत्य बढ़ने वाले हैं, उस वक्त में आत्मरक्षा का साधन क्या है? परमात्मा जानी जाननहार है, इसलिए विधि भी बताता है कि ऐसे समय में आत्मरक्षा की यही विधि है। ये पवित्रता का कवच, ये ब्रह्मचर्य व्रत का कवच अपने अंदर धारण कर लो, जिससे कोई व्यक्ति आपका अनिष्ट नहीं कर सकेगा और आप भी शक्तिशाली हो जाएंगे। इसलिए भगवान कहता है। लेकिन तब जो कई लोग पूछते हैं कि फिर ये दुनिया कैसे चलेगी, दुनिया को चलाने की विधि भी उसके पास है। आज से 2000 साल पहले क्राइस्ट का जन्म कैसे हुआ था? अगर एक वर्जिन मेरी बिना किसी भोग बल के क्राइस्ट को जन्म दे सकती है, उसको किसी ने भ्रष्टाचार नहीं कहा, मदर मेरी के रूप में पूछते हैं। तो 2000 साल पहले भी पवित्रता के बल से क्राइस्ट को जन्म दिया। हमारे शास्त्रों में भी बताते हैं पांडव और कौरवों की उत्पत्ति कैसे हुई, मंत्रों के बल से। यानी संसार में एक समय ऐसा भी था जब मंत्रों के बल से उत्पत्ति होती थी। पांडु धृतराष्ट्र और विदुर की उत्पत्ति कैसे हुई थी? दृष्टि के बल से उत्पत्ति हुई थी। श्री कृष्ण की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसको योगेश्वर कहते हैं, योग बल से उत्पत्ति हुई। इसलिए समय प्रति समय संसार में भी उत्पत्ति का रहस्य अपना रहा है। हर वक्त एक जैसी विधि नहीं रहती है। ये तो कलयुग के अंदर जब आत्माओं में ताकत नहीं रही तो भोग बल को एक माध्यम बना दिया, लेकिन सदा काल ये विधि नहीं है। इसलिए आने वाले समय के लिए भी परमात्मा के पास उत्पत्ति का रहस्य है, संसार को चलाने की विधि है। लेकिन तब कई लोग कहते हैं क्या सबूत? भगवान जानते थे कि कलयुगी मनुष्य जो है ना, हर बात में सबूत मांगते हैं। इसलिए भगवान ने नेचर में एक प्राणी ऐसा रखा है, मोर, एक पक्षी ऐसा रखा है जो आज के दिन में भी, ये कलयुगी दुनिया में भी पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है। इसीलिए तो श्री कृष्ण के ताज में भी मोर का पंख लगाया जाता है और किसी पक्षी का पंख नहीं लगाया, तोता कोयल मैना का पंख नहीं लगाया गया। मोर का ही पंख क्यों लगाया गया? क्योंकि पूरे 5000 साल के कल्प में एक मोर ही ऐसा पक्षी है जो सदा काल पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है। इसलिए श्री कृष्ण के ताज में वो शोभता है, क्योंकि जितना श्री कृष्ण पवित्र है उतना ही ये मोर का पक्षी भी पूरे 5000 साल पवित्र है। तो ये परमात्मा ने एक सबूत के नाम से प्रकृति में रखा हुआ है। इसलिए आने वाले समय में भी उत्पत्ति कैसे होगी उसकी चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के पास वो विधि है। इसलिए भगवान कहता है बाकी करना न करना आपके ऊपर है। आप सभी महान भाग्यशाली हो, यही कहूंगी। मणिनगर में भी मुझे बताया गया 7 लाख की पब्लिक है, लेकिन यहां तक पहुंचे कितने। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान जब नई दुनिया को रचते हैं ना, तो इलेक्शन से नहीं रचते हैं, सिलेक्शन से रचते हैं। जिसमें थोड़ी बहुत भी पात्रता है, उस पात्रता को भगवान स्वीकार करता है और उसी को ही जीवन में वो अवसर देता है अपने जीवन को दिशा देने का। लेकिन जो संदेश दिया, मानना न मानना आपके ऊपर है। अब भगवान ने आपको यहां लाकर के 2 रास्ते पर खड़ा किया है। एक रास्ता जो सतयुग की ओर जाने वाला है, दूसरा रास्ता जो समय का शिकार बनने वाला है। अब किस रास्ते पर चलना है ये आपकी मर्जी होगी, क्योंकि ये एक समय का संयोग है। जो भाग्य जब उदय होने का होता है तो निमित्त कोई कारण बन जाता है और वो अवसर भगवान प्रदान कर देते हैं, ताकि कोई आत्मा ये उल्हाना न दे कि अरे भगवान हमें मालूम होता था तो हम भी कर सकते थे, उसमें क्या बड़ी बात थी, इसलिए भगवान ने अवसर दिया। अब ये अवसर को जीवन में लेना ये अपने ऊपर है। इसलिए कहा जाता है किस्मत आपके हाथ में। किस्मत आपके हाथ में क्यों कहा गया? किस्मत, किस्मत कैसे बनती है पता है? अब किस मत पर चलेंगे, भगवान की मत पर चलेंगे या दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, किस मत पर चलना है? तो किस्मत आपके हाथ में, किस मत पर चलना है ये आपके ऊपर है, ठीक है ना? एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान के पास पहुंच गए। भगवान एक डायरी देख रहे थे। नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान क्या देख रहे हो? भगवान ने कहा, ये मेरी खास डायरी है। खास डायरी में क्या लिखा है? तो भगवान ने कहा, इसमें मैंने कुछ नाम लिखे हैं। किसके नाम लिखे हैं? तो भगवान ने कहा, इसमें उनके नाम लिखे हैं जो भक्त मुझे बहुत याद करते हैं। नारद जी बड़े खुश हुए, भगवान मेरा नाम तो सबसे पहला नंबर होगा, क्योंकि मेरे जितना तो कोई याद नहीं करता है। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तेरा नाम सबसे पहला नंबर है। बड़ा खुश हो गया नारद जी। फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए भगवान से कहते हैं, भगवान मैं डायरी देख सकता हूं? देख लो। देखा तो अपना नाम सबसे पहला नंबर देखकर बड़ी खुशी हुई, संतुष्टि हुई। आगे देखने लगे किस किस के नाम है, ढूंढने लगे हनुमान जी का नाम कहां है। देखा तो सारी डायरी में हनुमान जी का नाम ही नहीं था। अब नारद जी का तो काम था लड़ाई कराना। तो दुनिया में भगवान को याद करने वाले तो बहुत है, लेकिन भगवान जिसको याद करे वो कोटों में कोई और कोई में भी कोई विरला होता है। आप वो है, इसीलिए आपका नाम वो पर्सनल डायरी में है। इतने भाग्यशाली हो जो भगवान की बातों को यहाँ सुनने तक पहुंच गए, लेकिन अब ये डायरी में अपना नाम बना रहे या निकल जाना है ये आपके ऊपर। किस डायरी में रहना है वो आपके ऊपर है। तो इसीलिए महान भाग्यशाली, समय का जब योग आता है तो जीवन एक नया ही मोड़ ले लेता है। और ये भी एक प्रकार से समय की कृपा कहो, परमात्मा की कृपा कहो, या अपने अच्छे संस्कारों की कृपा कहो, जो आज ही हमें सुंदर अवसर मिला है इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ समाप्त करती हूँ। दो मिनट परमात्मा स्मृति में हम बैठेंगे ओम शांति।